वर्ण व्यवस्था, नारी और भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में हुई। इसके शास्त्रकार भी सबसे पहले वहीं हुए। प्राचीनतम वैष्णव जन आलावार थे। प्रसिद्ध आलावारों में 7 ब्राह्मण, 1 क्षत्रिय, 2 शूद्र और 1 निम्नतर जाति पनर के थे। इन्हीं में एक आलावार महिला आंदाल थी। शूद्र और महिला का इन प्राचीन वैष्णवों में होना महत्वपूर्ण है। यह इस तथ्य को प्रकट करता है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ ही वर्ण व्यवस्था और नारी पुरुष के भेदभाव को तोड़ने वाला था। प्रसिद्ध आलवार नाम या षटकोप शूद्र थे। उनके शिष्य उन्हें विष्णु का अवतार मानते थे। हमें ठीक ठीक पता नहीं कि वर्ण व्यवस्था से जर्जर इस देश में इस आंदोलन की उत्पत्ति की जिम्मेदार कौन सी भौतिक परिस्थितियाँ थीं। इस देश में इतने अधिक छोटे बड़े तथा विविध परिवर्तन होते रहे हैं कि कभी कभी शूद्रों की स्थिति भी कहीं कहीं बेहतर हुई है। इसलिए असंभव नहीं कि इन शूद्र जन्मा आलवारों की स्थिति उस समय अपेक्षाकृत बेहतर रही हो, लेकिन इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ कहना मुश्किल है। अभी तो भारतीय समाज का अध्ययन करने वाला व्यक्ति चकित होकर यह सोच ही सकता है कि जिस समय शंकराचार्य अद्वैत का प्रचार कर रहे थे, लगभग उन्हीं दिनों शूद्र जन्मा आलवार आचार्य षटकोप भक्ति का प्रचार कर रहे थे। स्मरणीय है कि आलवार संतों की रचनाओं के संग्रह नाल आयिर दिव्य प्रबंधम को वेदों के समकक्ष माना जाता है। मंदिरों में इनका पाठ वेद मंत्रों के साथ होता है। सुरेंद्रनाथ दास गुप्ता का विचार है कि रामानुज के दार्शनिक चिंतन पर आलवारों का प्रभाव है। भक्ति आंदोलन धार्मिक आंदोलन था, ऐसा आंदोलन जो भावनाओं पर बल देता था। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि यह भावना के धरातल पर सबको समान मानता था। सबको समान शंकराचार्य भी मानते थे, किंतु वह जगत को मिथ्या मानकर भी वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक थे। शंकराचार्य के इस स्वतोव्याघात पर टिप्पणी करते हुए राधाकृष्णन ने लिखा है, जो सत्य के प्रति एक बृहत्तर अवधारणा की ओर बढ़ रहा होता है, अपने युग की सामान्य मान्यताओं से पूर्णतः छुटकारा नहीं पा लेता। यद्यपि जात पात की व्यवस्था का शंकराचार्य की नज़रों में विशेष महत्व नहीं होना चाहिए था, तो भी वह उसमें विश्वास के लिए पूरी गुंजाइश छोड़ देते। वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति शंकराचार्य से भिन्न रुख अपनाया रामानुज ने। रामानुजाचार्य भी ब्रह्म को ही परम सत्य मानते थे, किंतु वे जगत को मिथ्या नहीं ब्रह्म का ही अंग मानते थे। उनका ब्रह्म निर्गुण या गुण रहित भी नहीं। कहने का तात्पर्य यह कि रामानुजाचार्य का विश्वबोध शंकर से भिन्न था। इसमें इस लोक को अपेक्षाकृत अधिक महत्व मिला था। रामानुजाचार्य के एक गुरु कांचीपूर्ण शूद्र थे। रामानुजाचार्य का जीवन उथल पुथल से भरा हुआ था। उनका पंथ उदार था, यद्यपि वह दीक्षा और पूजा की विधियों का पालन करते थे, लेकिन उन्होंने अपने पंथ में जैनियों, बौद्धों, शूद्रों, यहां तक कि अछूतों को भी स्थान दिया। वह स्वयं एक शूद्र के शिष्य थे और स्नान के उपरांत अपने एक अछूत मित्र की कुटिया में बहुत देर तक समय बिताते थे। रामानुज का स्वभाव विद्रोही मालूम पड़ता है। उन्होंने अपने गुरु का भी विरोध किया। यह विरोध ज्ञान और आचरण दोनों क्षेत्रों में था। उनका अपने गुरु यादव प्रकाश से छांतोग्य उपनिषद में प्राप्त कप्यासम पुंडरीकम के अर्थ को लेकर मतभेद था। अपने एक अन्य गुरु गोष्ठीपूर्ण से जो उनका मतभेद हुआ, वह आचरण संबंधी था। गोष्ठी पूर्णाचार्य ने इन्हें एक गुप्त मंत्र दिया, लेकिन उसे गुप्त ही रखने का आदेश भी दिया। इसे वह मंत्र सुखद लगा तो सोचा संचार में दुखित जीवों को इससे परिचित कराना चाहिए। रात के समय गोपुर पर चढ़ गए और वहीं से चिल्ला के मंत्रोच्चारण करने लगे। गुरु ने आज्ञा भंग करने के लिए डांटा तो बोले, इस मंत्र का प्रभाव देख मन में ऐसा आ गया कि श्री गुरु आज्ञा भंग करने से मैं नरक में अवश्य जाऊंगा, परंतु ये दुखिया जीव तो सुखी होंगे। भक्तमाल में इस घटना का यूं वर्णन किया गया है। सहस्त्र आस उपदेश करी जगत उद्धरण जतन कियो। गोपुर हुए आरोण ऊंच स्वर मंत्र उच्चरियो। सूते नर पर जाग बहत्तरी श्रवणनि धारियो। तितने गुरुदेव पधति भाई न्यारी न्यारी। राधा कृष्ण ने शंकर और रामानुज की तुलना करते हुए लिखा है, शंकराचार्य का अद्वैत यद्यपि बौद्धिक परम प्रतिभा को प्रकट करने वाला एक रत्न है, तो भी वह पवित्र धार्मिक भावनाओं को जागृत नहीं करता। उनका परम आत्मा में प्रेम और आराधना की भावना नहीं जगाता। रामानुजाचार्य सामंतवादी व्यवस्था को चुनौती नहीं देते थे। वह उसके अर्थतंत्र एवं राजतंत्र की अमानवीयता से उस प्रकार नहीं जूझे जैसा कि आज के संगठित दल थे। तो भी जाति प्रथा के बीच प्रति उनका दृष्टिकोण उतना अनमननीय और रूढ़ नहीं था जितना शंकराचार्य का। उन्होंने घोषणा की कि भक्ति सभी जाति भेदों से ऊपर है और वे ईश्वर की आराधना में सबके लिए समानता के समर्थक हैं। उनके अनुसार विष्णु के सभी भक्त समान हैं, क्योंकि सभी लोग ऊंची जाति वाले और नीची जाति वाले ब्राह्मण की ही अभिव्यक्ति हैं। उन्हें अछूत जाति के एक भक्त तुरुप्पन आलवार द्वारा रचित तुरुवयमोली को वैष्णवों का वेद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हुई। रामानुज ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि इन्होंने दिल्लीपति यवन के यहाँ से एक भगवान मूर्ति लाकर उसे मंदिर में स्थापित किया। उस बादशाह की लड़की भी भक्त हो गई। इसके अलावा एक स्त्री भक्त विषयी को अपना शिष्य बनाया। यादव प्रकाश ने इनकी हत्या का कुचक्र रचा तो व्याधा भील ने इसकी रक्षा की। इन बातों से स्पष्ट पता चलता है कि भक्ति आंदोलन के आद्य आचार्य रामानुज का जीवन विषम था। उनके जीवन पर तथाकथित निम्न वर्ण के लोगों का गहरा प्रभाव था। निसंदेह भक्ति के आद्य आचार्य ने शूद्र को अपना गुरु बनाया था। रामानुज ने यवन बादशाह के यहाँ से मूर्ति लाकर उसे मंदिर में विराजमान किया। उसकी लड़की को भी भक्ति में दीक्षित किया। यह किंवदंती भी उनकी धार्मिक उदारता, रूढ़िहीनता और लोकोन्मुखता प्रकट करती है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के मूल में ही जाति पाति की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही है। आंडाल का इतना प्रसिद्ध होना इस बात को प्रकट करता है कि इस आंदोलन में नारी का भी योगदान रहा है, यह अकारण नहीं। वर्ण व्यवस्था और नारी पराधीनता, इन दोनों का परस्पर गहरा संबंध है। भक्ति आंदोलन के रूढ़ विरोधी या विद्रोही रूप को समझने के लिए इस बात का स्मरण कर लेना जरूरी है कि हमारे देश में शूद्रों और नारी की क्या स्थिति रही है। हमारे देश की ही नहीं, यह हर उस समाज की कहानी रही है जहां सामंती व्यवस्था थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, सामंती व्यवस्था में खाने पहनने की चीजें मशीनों से नहीं, हाथ से, बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर, कारखानों में नहीं, खेत, घर या दुकान पर तैयार की जाती हैं। हल माची की खेती से लेकर चरखे करघे की कताई बुनाई तक हर उद्योग में पूरा कुटुंब शामिल होता है। जो पेशा बाप का वही बेटे का, इस तरह पेशे के हिसाब से जातियां बनती हैं। पेशे का आधार होता है कुटुंब, इसलिए जो जाति बाप की होती है वही उसके बेटे की होती है। समाज में जो हाथ से खाने पहनने की चीज़ें पैदा नहीं करता वह ऊंचा समझा जाता है। जो हल चलाता है, कपड़े बुनता है, जूते गांठता है, वह नीचा समझा जाता है। जिस देश में सामंती व्यवस्था ज़्यादा दिन तक रही, उसमें जाति प्रथा भी ज़्यादा दिन टिकाऊ हुई। उसकी संकीर्णता भी अन्य देशों को देखते हुए बहुत ही घृणित रूपों में प्रकट हुई, जैसे भारत में। इस जाति प्रथा का संबंध नारी की स्थिति से यों है। समाज में द्विज और शूद्र का भेद उत्पन्न हुआ, तब उसके साथ स्त्री पुरुष में छोटे बड़े का भेद भी पैदा हुआ। पुराने कबीले टूटने पर नए नए श्रम विभाजन के आधार पर जैसे वर्ण व्यवस्था उत्पन्न होती है, वैसे ही श्रम विभाजन के आधार पर स्त्री पुरुष में छोटे बड़े का भेद उत्पन्न होता है। स्त्री घर का काम करती है, पुरुष बाहर का काम करता है। संपत्ति का स्वामी पुरुष होता है, वह युद्ध करता है, शास्त्र रचता है, व्यापार करता है। स्वभावतः उसके काम के आगे स्त्री का घरेलू काम छोटा लगता है। शूद्रों में जहाँ स्त्री पुरुष के साथ काम करती है, वह द्विज वर्ण की देवियों की तुलना में अधिक सामर्थ्य होती है। जैसे वर्ण व्यवस्था विश्वव्यापी है, वैसे ही नारी की पराधीनता। सामंती व्यवस्था जहाँ ज़्यादा पुरानी और मजबूत होगी, वहाँ जाति पाति के भेदभाव की तरह स्त्री और पुरुष में छोटे बड़े का भेद भी ज़्यादा होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करने पर डॉक्टर रामचरण शर्मा इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि निम्न वर्णों में मातृप्रधानता के कई तत्वों के बने रहने के कारण उनके बीच स्त्रियों का कुछ स्थान था, तथा ये सभी निषेधाज्ञाएँ बताती हैं कि शूद्रों में विवाह का बंधन उतना प्रबल नहीं होता था जितना उच्च वर्णों में, जिनकी महिलाएं पुरुषों पर अधिक निर्भर रहती थीं। निम्न वर्ग के लोगों को अपना पेट पालने के लिए सपरिवार काम करना पड़ता है। उनका पूरा परिवार स्वामी पर अवलंबित होता है, अतः वे सपरिवार स्वामी की सेवा करते हैं। उनकी औरतें घर में रहना गंवारा ही नहीं कर सकती, इसीलिए उन्हें बाहर निकलने की आज़ादी विवश मिल जाती है। कौटिल ने बताया है कि अभिनेता, खिलाड़ी, गायक, मछुआ, शिकारी, पशुपालक, आसवक और ऐसे अन्य लोग साधारणतया अपनी औरतों के साथ घूमते थे। उच्च वर्णों की महिलाओं के साथ ऐसी बात नहीं थी। उनका कार्यकलाप केवल घर तक सीमित रहता था। शूद्र वर्ण की महिलाएं इसलिए घर से बाहर जाती थीं कि उन्हें अपने परिवार के गुजारे के लिए खेतों और चारगाहों में काम करना पड़ता था। भक्ति आंदोलन नारी को भी घर से उसी तरह बाहर आने का निमंत्रण देता था जिस प्रकार पुरुष को। भक्ति की दृष्टि में नारी और पुरुष में अंतर नहीं, दोनों अंशी के अंश हैं। लेकिन सामंती व्यवस्था नारी को, विशेषतः उच्च वर्ग की नारी को, घर से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं दे सकती थी। मीरा के भक्त जीवन का ही यही मूल भौतिक संघर्ष था। वह यदि निम्न वर्ण में जन्मी होती तो उनके बाहर निकलने पर रूढ़िग्रस्त समाज इतना कुपित और क्षुब्ध न होता। वह आंदोलन कैसा था जो राणा कुल की स्त्री को बाहर निकलने की प्रेरणा देता था? वे कौन सी सामाजिक परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके कारण दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था के उपेक्षा करने वाले और शूद्रों, अत्यज्यों, नारियों को सम्मान देने वाले इस भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ? दक्षिण के विषय में हमारी जानकारी अपेक्षाकृत कम है, अतः इस समस्या के संदर्भ में हम प्रथमतः उत्तरी भारत या हिंदी भाषी क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के प्रचार की परिस्थितियों पर विचार करेंगे। चिंतकों, विशेषतः समाजशास्त्रियों का ध्यान भक्ति आंदोलन की आधारभूत परिस्थितियों का अनुसंधान करने की ओर आकृष्ट हो चुका है। हिंदी भाषी क्षेत्र में भक्ति आंदोलन रामानंद द्वारा प्रवर्तित हुआ। रामानंद का समय 14वीं-15वीं शताब्दी विक्रमी है। इस समय तक दिल्ली पर मुसलमान शासकों का अधिकार हो चुका था और इस्लाम पर का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा था। इस्लाम अपने साथ सैनिक, हथियार और मतवाद ही नहीं लाया, उसके साथ कुछ और भी चीज़ें आईं। डॉक्टर इरफान हबीब ने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के, जिसे वह एकेश्वरवादी धारा कहते हैं, विकास के ऐतिहासिक कारणों पर विचार किया है। उनके मत का सारांश यह है कि इस मत के उत्थान में शिल्पियों और जाटों की प्रमुख भूमिका रही है। उनके विचारानुसार नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर 13वीं-14वीं शताब्दी में विलास, सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। इन शासकों के साथ आए हुए लोगों को भारत में भी उन सुविधाओं और भोग विलासी वस्तुओं की जरूरत पड़ी जिनके वे अभ्यस्त थे। डॉक्टर हबीब का विचार है कि इसके कारण भारत में पहली बार अनेक नई कलाओं, तकनीकों और कारखानों में निर्मित होने वाली वस्तुओं की नई विधियों का प्रवेश हुआ। गुंबदों, मेहराबों और कागज का निर्माण होने लगा। घोड़ों की नालें, रकाबें भी शायद पहली बार बनने लगी। उनका विचार है कि ऊंचे दर्जे के वस्त्रों की मांग का बढ़ जाना बहुत उल्लेखनीय परिवर्तन था। सिले हुए वस्त्रों का रिवाज बहुत बढ़ गया। तुर्कों के साथ वस्त्रों की सिलाई यानी दर्जी की कला भी करीब करीब नई कला के रूप में ही भारत में आई। इस नई मांगों की बढ़ोतरी के साथ साथ यह भी हुआ कि नए शासकों के हाथ में देश के आर्थिक स्रोत भी केंद्रित होकर आने लगे। अलाउद्दीन खिलजी खेती के पैदावार का आधा हिस्सा भूमि लगान के रूप में वसूल करता था। इस धनराशि का वितरण सरदारों में होता था। वे इस संपत्ति से मौज मनाते थे और शिल्पियों को काम कर लगाते थे। शिल्पियों की मांग इतनी बड़ी कि उनकी पूर्ति इस देश के शिल्पियों से नहीं हो पाती थी। नई कला कुशलता को स्वीकारने में जाति व्यवस्था का पुराना ढांचा आड़े आता था। यह कमी दो तरीकों से पूरी हुई। बाहरी देशों के कारीगरों को यहाँ लाया गया और बड़ी संख्या में गुलाम बनाए गए लोगों से शिल्पियों का काम लिया गया। संभवतः हबीब का आशय यह है कि उन्हें विभिन्न कौशल सीखने के लिए विवश किया गया। बर्नी ने दिल्ली के गुलाम बाजार का जो विवरण दिया है उससे पता चलता है कि काम में सुशिक्षित और अशिक्षित गुलाम बच्चे बेचे जाते थे। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में 50,000, फिरोज तुगलक की सेवा में 1,80,000 गुलाम थे, जिनमें से 12,000 शिल्पियों का काम करते थे। डॉक्टर इरफान हबीब का विचार है कि धीरे धीरे देखा देखी इस देश के पुराने शिल्पियों ने भी ये कलाएं सीखनी शुरू की। उनमें से कुछ ने इस्लाम स्वीकार किया, कुछ ने नहीं। कई समूह या जातियों के हिंदू और मुसलमान दोनों होने का यही रहस्य है, जैसा कि जुलाहा और कोरी। 13वीं 14वीं शताब्दी में केंद्रीय सत्ता के स्थापित होने पर व्यापार में स्थिरता आई और इससे निम्न वर्ण के शिल्पियों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। आर्थिक दशा में सुधार होने पर इन्होंने सामाजिक स्थिति और सम्मान भी प्राप्त करने का प्रयास किया। क्या कबीर का रामानंद को गुरु बनाने का अथक प्रयास करना इसी प्रयास का परिणाम था? इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्गुण धारा के अधिकांश संत तथाकथित निम्न वर्ण से संबद्ध थे। जुलाहा या वनजीवी जाति का इतिहास तो इस देश के साहित्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने कबीर में इस जाति के इतिहास पर जो प्रकाश डाला है वह आज भी कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण लगता है। उससे डॉक्टर इरफान हबीब के निष्कर्षों का समर्थन भी होता है और थोड़ा पीछे का इतिहास भी झलकता है। द्विवेदी जी ने पौराणिक उल्लेखों का ऐतिहासिक उपयोग किया है। उनमें इतिहासकार की भी वह दुर्लभ प्रतिभा है कि पौराणिक उल्लेखों के कुहासे को छांट कर उसमें से समाज ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाल दें। द्विवेदी जी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड के 10वें अध्याय के कुछ श्लोकों को उद्धृत करके दिखाया है कि पुराण के अनुसार मल्लेच्छों से कुविंद कन्या में जोला या जुलाहा जाति की उत्पत्ति हुई है, अर्थात मल्लेच्छ पिता और कुविंद माता से जो संतति हुई वही जुलाहा कहलाई। पुराणकार ने मल्लेच्छ और कुविंद के संबंध में कोई संदेह नहीं रहने दिया। विश्वकर्मा ने शुद्रा के गर्भ से 9 शिल्पकार पुत्र उत्पन्न किए थे, माली, लुहार, शंखकार, कुविंद, कुम्हार, कसरा, बढ़ई, चित्रकार, सुनार। कुविंद वन्यजीवी शिल्पी थे। जुलाहा पिता और कुविंद कन्या से शराक की उत्पत्ति हुई। शराक भी वन्यजीवी शिल्पी जाति है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ने मल्लेच्छ की उत्पत्ति भी बताई है। शूद्र माता और क्षत्रिय पिता से मल्लेच्छ की उत्पत्ति हुई। मल्लेच्छ पापपरायण बताए गए हैं। दिक्कत यही कि पापपरायण होने के बावजूद वे निर्भय और दुर्धर्ष थे। मल्लेच्छ अर्थात मुसलमान क्षत्रिय पिता और शूद्र माता से उत्पन्न हुए। मल्लेच्छों के प्रति पुराणकार का विशेष कोप है। वे अविद्ध करणा कान नहीं छिदवाते, क्रूर निर्भय हैं, शौचाचार विहीन है, खान पान में पवित्रता नहीं बरतते। फिर भी पुराणकार ने स्वीकार किया है कि वे बलवान, दुरंत, निर्भय, दुर्धर्ष हैं। यह राजनीतिक यथार्थ का आग्रह रहा होगा। यदि मल्लेच्छ का अर्थ मुसलमान है जैसा कि द्विवेदी जी मानते हैं तो निश्चय ही इस पुराण की रचना इस्लाम की भारत में विजय के उपरांत हुई होगी। साथ ही पुराणकार ने 9 प्रकार के शिल्पियों को ब्रह्म शाप से ग्रस्त, पतित, वर्णशंकर और अजाति बताया है। अजात शब्द का प्रयोग आज भी गांव में जाति बहिष्कृत के लिए होता है। ये शिल्पी वर्णहीन या अवर्ण थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण का उपर्युक्त उल्लेख जाति प्रथा के टूटने का स्पष्ट संकेत देता है। यह उस स्थिति का द्योतक है जब मल्लेच्छ इस देश में शासक हो चुके थे और शिल्पी वर्ग का उत्थान हो रहा था। महमूद गजनवी के हमले के पूर्व रचित अभ्रंश काव्य संदेश शासक के कवि ने अपने को कोलीय कहा है। टीकाकारों ने कोलीय का अर्थ तंतुवाय किया है, जिससे पता चलता है कि कवि कोरी है। यदि अद्दहमाण या अब्दुल रहमान ने जो आत्मपरिचय दिया है वह संकेत पूर्ण है। पच्चायेसी पहुओ पुब प्रसिद्धो यमिच्छ देशोत्थी तस विषय संभुओ आरद्धो मीरणेश तड़यो कुल कमलो पई कब्बीसु गीय विषयेसु अद्दह माण प्रसिद्धो स्नेहय रासयम रैयम संदेश रासो। अब्दुल रहमान ने काव्य के प्रारंभ में सूर्य चंद्र तारे पृथ्वी आकाश को बनाने वाले करतार की जैसी वंदना की है वह जायसी से बहुत मिलती जुलती है। इस काव्य में इस बात के संकेत है कि वह मुस्लिम थे, वन्यजीवी थे और संभवतः नव मुस्लिम थे। उन्होंने अपने पिता का नाम मीर सेन बताया है। वे भारतीय संस्कृत भारतीय साहित्य की परंपरा के मर्मज्ञ रचनाकार हैं, इसीलिए वे विदेशी मुस्लिम नहीं हो सकते। उनकी कविता श्रृंगारी है, इसलिए उनकी रचना को निर्गुण साहित्य धारा में नहीं रखा जा सकता, यद्यपि वह बहुत एकश्वरवादी रहे होंगे। द्विवेदी जी ने उपर्युक्त पंक्तियों का एक और अर्थ सुझाया है जो बड़े काम का है। अब्दुल रहमान ने भारतीय साहित्य के संस्कार पूरी मात्रा में विद्यमान थे। रिजली ने बहुत पहले बताया था कि जुलाहे पंजाब से ढाका तक एक धनुषाकृति भूखंड में बसे हुए हैं और जान पड़ता है कि किसी समय वे सामूहिक रूप में मुसलमान हुए थे। मैंने अपनी कबीर नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक दिखाया है कि किन कारणों से जुलाहे धीरे धीरे मुसलमान हुए और पीढ़ियों तक उनमें हिंदू संस्कार बने रहे। दूसरा अर्थ इस प्रकार होगा, पूर्व देश में जो मिथ्या धर्म विश्वास व्यापक रूप से फैला हुआ है, प्रत्याख्यान से मीर सेन के घर में उसी मिथ्या देश में एक आराध्य उत्पन्न हुआ जो उसके कुल का कमल सिद्ध हुआ। द्विवेदी जी ने जुलाहा तथा अन्य वन्यजीवी जातियों के दृष्टांत देकर बलपूर्वक कहा है, शायद ही किसी अन्य जाति में अपनी वर्तमान सामाजिक मर्यादा के विषय में ऐसा तीव्र असंतोष हो जैसा कि वन्यजीवी जातियों में पाया जाता है। यह निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि भारत में अन्य शिल्पियों की अपेक्षा वन्यजीवी शिल्पियों की स्थिति बेहतर रही है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में कपड़े का व्यापार सर्वाधिक उन्नत अवस्था में रहा है। वन्यजीवी जातियों में काव्य रचना की प्रवृत्ति भी काफी पुरानी मालूम पड़ती है। भोज प्रबंध में उल्लिखित एक रोचक प्रसंग मिलता है जिससे पता चलता है कि बुनकरी का पेशा और कविता करने का काम साथ साथ चल सकता था। एक कुविंद ने शाहशांक से कहा, कविता करता हूँ बहुत अच्छी नहीं करता, यत्न करूँ तो अच्छी भी कर सकता हूँ। मैं कविता करता हूँ, बुनकरी करता हूँ। अच्छा, यदि आपको मेरा कुछ भी पसंद नहीं तो जाता हूँ। काव्यम करो में नहीं चारुतरम करो में, यत्नात करो में यदि चारुतरम करो में, भूपाल मौलिक मणिमंडित वादपीठ, हे शाहशांक कवयामि वयामि यामि, कवयामि वयामि यामि। में अनुप्रास का चमत्कार तो है ही, लेकिन उनमें केवल ध्वनिगत या शाब्दिक सहभागिता नहीं, व्यवसायगत या आचारगत सहभागिता भी है। इस छंद का महत्व रोचकता में तो है ही, इस तथ्य में भी है कि भोज प्रबंध की रचना के समय इस देश में वन्यजीवित और काव्य रचना दोनों काम एक ही आदमी कर सकता था या करता था। यामी के इस भाव से यदि पसंद नहीं तो जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा स्वाभिमान भी व्यंजित होता है। बाद में राजा ने कुविंद को तू कहकर संबोधित किया तो उसे क्रोध भी आया। उसने कहा, कालिदास के अतिरिक्त मैं किसी को कवि नहीं मानता, आपकी सभा में कालिदास जैसा है कौन। कोविंद ने अंत में राजा से अपना रोष भी प्रकट कर दिया। बाल्यावस्था में पुत्र, संभोग के समय स्त्री, स्तुति करते समय कवि और युद्धस्थल में योद्धा यदि तू शब्द का प्रयोग करे तो प्रशंसनीय समझा जाता है, परंतु तुमने मुझे किस मोह में पढ़कर तू कहा है याद करो। बाल्य सुतानाम सूरते अंगानाम स्तुतो कविनाम समरी भट्टानाम त्वकार युक्ता ही गिरह प्रशस्ता कस्ते प्रभो मोह भर स्मरत्वम। बुनकर और कविता के गहरे संबंध की सूचना मंदसौर के लेख से भी मिलती है। यह छठी शताब्दी के आसपास का बताया जाता है। अब चिंतकों ने इस धारणा को अस्वीकार करना शुरू कर दिया है कि परंपरागत भारतीय समाज स्थिर या अपरिवर्तनशील रहा है। उनका विचार है कि जाति पांति को व्यवस्था का पर्याय नहीं समझना चाहिए। जाति व्यवस्था में आर्थिक स्थिति के अनुसार ऊंचा नीचा होता रहता है। जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत गत्वर और खुली रही है। उदाहरण के लिए जब क्षत्रिय वर्ण की बात आती है तब इसका अर्थ वेदों के समय से लेकर आज तक किसी शासक वर्ग में से नहीं होता। प्रायः इसका मतलब उस स्थानीय समूह से होता है जिन्होंने आर्थिक राजनीतिक शक्ति हथिया ली। डॉक्टर श्रीनिवास का मत है कि भारतीय प्रायद्वीप में विशुद्ध क्षत्रिय और वैश्य हैं ही नहीं। स्थानीय जातियां सैनिक या व्यवसायिक परंपरा के कारण क्षत्रिय या वैश्य कहलाती है। मतलब है कि लौकिक अवनति या उन्नति के जिस जाति का वर्ण ऊपर नीचे हो सकता है, और यह भारत में बहुत होता रहा है, जुलाहों और अन्य वन्य जीवी जातियों में उच्चतर वर्ण में परिगणित होने का उपक्रम बहुत मिलता है। सन 1901 की मतगणना के अनुसार 22 प्रकार की वन्य जीवी जातियां थी। सारे भारतवर्ष में इन सभी जातियों की सामूहिक मर्यादा एक सी नहीं है। निचले बंगाल के तांति इनमें सबसे अधिक ऊंची सामाजिक मर्यादा के अधिकारी बताए गए हैं। अधिक धनी और संभ्रांत होने पर ये लोग कायस्थों के साथ विवाह संबंध भी कर लेते हैं। द्विवेदी जी ने भारतवर्ष में जाति भेद नामक पुस्तक से आचार्य क्षिति मोहन सेन की ये पंक्तियां उद्धृत की हैं। बंगाल के जुगी या नाथ लोग पहले तो वेद स्मृति शासित हिंदू नहीं थे। नाथ धर्म का एक स्वतंत्र और पुराना धर्म है। मध्ययुग में इनमें से अधिकांश बाध्य होकर मुसलमान हो गए थे। यही जुलाहे हुए, ये स्वयं अपना पुरोहित किया करते थे। बाद में उन लोगों ने जो पुरोहित का काम करते थे जनेऊ पहनना शुरू किया। इससे समाज में एक जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ। टिपरा जिले के कृष्णचंद दलाल ने जनेऊ पहनने का आंदोलन किया था। अब इनमें कितने बाहर जाकर पंडित शर्मा और उपाध्याय बनकर बाकायदा ब्राह्मण बन गए। यह जाति प्रथा के परिवर्तनशीलता के वास्तविक स्थिति है, किंतु इससे व्यवस्था का ढांचा नहीं टूटता। तांती ऊपर खिसक कर कायस्थ या शर्मा बन गया तो वह भी अन्य वन्य जीवी जातियों को अवर्ण समझकर उनसे रोटी बेटी का संबंध तोड़ लेगा। जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की परिधि में ही परिवर्तित होती आई है। इसी बात को ध्यान में रखकर डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा है, पारंपरिक युग में जाति की गतिशीलता का परिणाम किसी जाति या उसके हिस्से के स्थानगत परिवर्तन में ही होता था, इससे संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता था। वर्ण व्यवस्था के परिधि में जाति पाति के ऐसे परिवर्तन भारत में बहुत प्राचीन काल से होते आए हैं। अनुमानतः ऐसे परिवर्तनों के पीछे आर्थिक कारण जरूर रहे हैं। यद्यपि सर्वत्र आर्थिक कारणों को ढूंढ पाना दुष्कर है। उत्तर भारत में सरहपा जैसे सिद्ध ने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र आघात इस्लाम के भारत आगमन के बहुत पूर्व किया था। सरहपा का आघात कबीर से कम तीव्र नहीं। ब्राह्मण सिंहम जानंत ही भेउ एवई पठियउ ए चौवेउ मट्टी पाण कुशलई पठंत गरह बैसी अग्नि हुड़ंत कज्जे बिरह हूँ अवह होमे अख डहाबिया कुंडई धुएं। सरहपा स्वयं ब्राह्मण थे, किंतु यह ध्यातव्य है कि उन्होंने सरकार कन्या से विवाह किया था। सरकार अर्थात तीर बनाने वाली जाति, यह जाति भी शिल्पी ही रही होगी। ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में वैष्णव आंदोलन के परिवर्तन का भी सामाजिक आधार यह था कि वहाँ शूद्रों शिल्पियों या निम्न वर्ण के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार हो चला था। किंतु इस विषय में दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तो इस सुधार की बात अपेक्षित दृष्टि से ही की जा रही है, दूसरे इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी बहुत तथ्यों को इकट्ठा करने की जरूरत है। मनुस्मृति में शूद्रों पर जो पाबंदी लगाई गई है उससे अनुमान लगाया गया है कि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था के लिए खतरा महसूस किया जाने लगा था। कतिपय प्राचीन पुराणों में कलयुग के जो वर्णन मिलते हैं वे प्रायः इसी युग का संकेत करते हैं, जबकि वर्ण के आधार पर विभाजित ब्राह्मण समाज की नींव अवधर्मी संप्रदायों के कार्यकलाप और बैक्टेरियन ग्रीक शक पार्थियन और कुषाणों जैसे विदेशियों की चढ़ाई के कारण हिल गई थी। इस काल में शूद्रों और वैश्यों के अंतर क्रमशः मिटते जा रहे थे, शूद्र शिल्पी बन रहे थे। मालूम होता है कि इस काल में शिल्पियों की संख्या तो काफ़ी बढ़ी थी, उनके परिस्थिति में भी सुधार हुआ। इस काल में प्राप्त उल्लेखों में गंधियों और स्वर्णकारों को अनेक बार उदार उपासक कहा गया है। मिलिंद पन्नों में 5 दर्जन शिल्पियों की चर्चा मिलती है। ऐसा जान पड़ता है कि वस्त्र निर्माण, रेशम बुनाई एवं अस्त्र शस्त्र और विलास सामग्रियों के निर्माण में अच्छी प्रगति हुई थी। इन सब बातों से पता चलता है कि इस काल के शिल्पियों ने तकनीक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दूसरी शताब्दी ईस्वी में दक्षिण में यदि सातवाहन राज्य करते थे, बौद्ध उपासक कुंभकारों, तेल कारखानों के मालिकों और बुनकरों के पास रुपए जमा करते थे, जिससे भिक्षुओं को वस्त्र आदि दिए जाते थे। सिद्ध होता है कि शिल्पकार संघ बनाकर स्वतंत्र रूप से काम करते थे। स्पष्ट है कि वे जमा की हुई इस राशि से अपने लिए कच्चा माल और उपकरण खरीद सकते थे और उत्पादित सामग्री को बेचने से हुई आय से उक्त राशि का ब्याज चुका सकते थे। मनु ने शूद्रों को दंड देने का बहुत विधान किया है। साथ ही यह आश्चर्यजनक विधान भी किया है कि जो शूद्र ब्राह्मण को गाली दे उसे 12 पण